हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वेदांत ने विहा को सोफे पर बैठाया और फिर जल्दी से एक गिलास पानी का भर के उसकी तरफ करते हुए कहा, ये लो पानी पी लो। तभी वहाँ जूली आ गई। जूली ने कहा, सर मैं? वेदांत ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, लीव जूली, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है फिलहाल। जूली ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और फिर तेज कदमों से चलती हुई बाहर निकल गई। जूली बाहर जाते वक्त सोच रही थी कि वेदांत निमानी एक ऐसा शख्स जिसे किसी के मरने तक से ना फर्क पड़े, आखिर वो एक लड़की के रोने से कैसे परेशान हो सकता है। उसने देखा था वेदांत की आंखों में उस अजीब सी तड़प थी। साथ में जूली को डर भी लग रहा था। अगर वो इंसान वेदांत के लिए इतना अजीज है तो कहीं वेदांत उसकी इस बदतमीजी के चलते उसकी जॉब ना छीन ले। वो बस ये सोचकर खुद को तसल्ली दे रही थी कि वेदांत काफी प्रोफेशनल है, वो ऐसी चीजों को कभी जॉब से रिलेट नहीं करता है, तो शायद उसे जॉब से नहीं निकालेगा। वहीं वेदांत घुटनों के बल विहा के सामने बैठा था। वो हाथ में टिश्यू पेपर लिए कभी उसकी नाक साफ कर रहा था तो कभी आंखें। विहा का काजल फैल चुका था जिससे वो काफी बुरी दिख रही थी। इस वजह से वेदांत जल्दी जल्दी टिश्यू पेपर से उसकी आंखें साफ कर रहा था। वहीं विहा अब भी एकटक वेदांत के चेहरे को देख रही थी। वेदांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस करो बच्चा, क्यों रोए जा रही हो, वो भी बिना वजह। जूली को पता नहीं था ना कि तुम मेरी वाइफ हो, वरना वो कभी ऐसा नहीं करती। विहा ने गुस्से में चेहरा फेर लिया। वेदांत अब फर्श से उठकर उसके पास बैठ गया और उसका छोटा सा चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, अच्छा बताओ क्या करूं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। विहा ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या वो जॉब मैं नहीं कर सकती हूँ जो मिस जूली करती है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब वो आपके आसपास घूमती है। ऊपर से वो कितनी सुंदर है, मुझे बुरा लग रहा है, आई फील जेलस। वेदांत ने विहा की प्यारी सी आंखों को देखते हुए कहा, पर मुझे तो तुम ही सुंदर लगती हो, इसकी वजह से इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। विहा ने अपने सूखे होठों पर जीभ घुमाते हुए कहा, सच में आपको अच्छी लगती हूँ? वेदांत ने आगे बढ़कर आहिस्ता से उसके माथे को अपने होठों से छूते हुए कहा, हाँ बेबी, तुम बहुत क्यूट हो, बहुत प्यारी सी हो, बस थोड़ा रोना धोना कम कर दो ना तो तुम परफेक्ट हो। विहा ने कहा, अब तो भगवान जी ने ऐसा बना दिया मुझे, रोना धोना कभी कम नहीं होगा। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत इमोशनल, मुझे छोटी छोटी बातों पर रोना आता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आ जाता है। मेरे अंदर सब्र नहीं है और भी बहुत सारी खामियां हैं मेरे अंदर, तो क्या फिर भी मैं आपको परफेक्ट दिखती हूँ? वेदांत ने उसका हाथ थामते हुए कहा, ऑफ कोर्स यू आर परफेक्ट फॉर मी। वहीं दूसरी तरफ अनाही जल्दी जल्दी अपना सामान समेट रही थी क्योंकि उसे सडनली पीरियड्स आ गए थे और उसे घर जाना था। वो अपना पर्स लेकर तेजी से ऑफिस से बाहर चली गई। उसने जूली को कॉल करके सब कुछ इन्फॉर्म किया और फिर टैक्सी लेकर निमानी हाउस चली गई। घर जाते ही अनाही सबसे पहले फ्रेश हुई और फिर बेड पर बैठकर अपना सर हेडरेस्ट पर टिकाते हुए बोली, ये तो दो दिन बाद आने वाले थे, आज कैसे आ गए? अनाही ने कुछ देर वैसे ही रेस्ट किया, लेकिन उसके बाद उसे अपनी कमर में ज्यादा ही दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए उसने सोचा वो पेन किलर ढूंढ लेती है। उसने बेड से उठकर हर जगह मेडिसिन ढूंढना शुरू किया। वो नीचे बैठकर ड्रॉर के आखिरी कंपार्टमेंट को खोल रही थी कि जल्दबाजी में एक फाइल आकर गिरी। अनाही ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, क्यों सब कुछ इतना मैसी हो रहा है? अनाही बस उसे फाइल को बंद करके रखने ही वाली थी कि उसे उसके ऊपर चमकता रूहान का नाम दिखा, जिसे देखकर अनाही की आंखें छोटी हो गईं। उसने फाइल को खोलते हुए कहा, मेडिकल रिपोर्ट, वो भी रूहान जी की, बट वो तो एकदम फिट एंड फाइन है, उनको क्या हुआ है? कुछ सोचकर अनाही ने दूसरा पन्ना पलटा जिसमें रूहान की साइकैट्रिस्ट वाली रिपोर्ट थी। अनाही जैसे जैसे पन्ने पलट रही थी उसकी आंखें हैरानी से फैल रही थी। उसे तो पता ही नहीं था रूहान किस मेंटल कंडीशन से गुजर रहा है और उसके बावजूद रूहान उसके सामने कितना नॉर्मल बिहेव करता है। अनाही के हाथ कांप रहे थे उस फाइल को पढ़ते हुए। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने फाइल बंद करते हुए कहा, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उनको समझदार बनाने की कोशिश कर रही हूँ, उनके साथ इतना रूड बिहेव कर रही हूँ, वो इन सब से सफ़र कर रहे हैं। अनाही कुछ सोचती उससे पहले ही उसके हाथ पर एक पंजा आकर लगा जो ऑब्वियसली शुगर ने मारा था। अनाही ने घबराहट से शुगर की तरफ देखा तो वो उसे गुस्से में घूर रही थी, क्योंकि अनाही रूहान का सामान जो छू रही थी, जो शुगर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अनाही ने वो फाइल वापस रखी और मेडिकल बॉक्स से एक पेनकिलर निकालकर उसे खा लिया। अब वो बेड पर बैठकर हर चीज के बारे में सोच रही थी, तो वहीं शुगर अब उसके आगे पीछे घूमकर उसे बेड से खड़ा होने पर मजबूर कर रही थी, क्योंकि शुगर को याद था कल कैसे अनाही ने उसे सोफे पर नहीं बैठने दिया था, तो आज वो उसे कैसे बेड पर बैठने दे सकती है। अनाही ने गुस्से में शुगर को धक्का देते हुए कहा, क्यों परेशान कर रही हो, ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब है, बैठ जाओ ना शांति से, कुछ चुरा के थोड़ी लेकर जा रही हूँ, माना तुम्हारे मालिक का कमरा है पर साथ में मेरे हस्बैंड का भी है। वो फाइल पढ़ने के बाद अनाही इतना दुखी हो चुकी थी कि उसे महसूस ही नहीं हुआ कि वो मासूम से जानवर पर गुस्सा कर रही है जिसको उतनी समझ नहीं है जितनी अनाही को है। शुगर को चोट लग गई थी इसलिए वो कराहते हुए वहीं साइड में बैठ गई और अनाही ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लीं। शाम के करीब 7 बजे रूहान की गाड़ी एक जोरदार ब्रेक के साथ निमानी हाउस के सामने आकर रुकी, जिसमें से रूहान लगभग दौड़ते हुए बाहर आए। उसे थोड़ी देर पहले ही पता चला कि अनाही घर चली गई है और वो भी तबीयत खराब होने की वजह से। अगर उसे पहले पता चलता तो वो अनाही को खुद घर ड्रॉप करने आता। उसे गुस्सा आ रहा था ये सोचकर कि जब जब अनाही को उसकी जरूरत होती है उसके पास क्यों नहीं होता है। रूहान तेजी से चलता हुआ कमरे में आया तो देखा अनाही सिमटकर बेड पर लेटी हुई थी। अनाही के पेट में दर्द था इसलिए उसके दोनों घुटने मुड़े हुए थे। रूहान जल्दी से अनाही के पास जाकर उसका दर्द से सफ़ेद पड़ चुका चेहरा अपने हाथों से छूते हुए कहा, मैडम जी आपकी तबीयत। रूहान आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही अनाही घबराते हुए आंखें खोलकर उसकी तरफ देखने लगी और फिर जल्दी से बेड से उठते हुए बोली, सॉरी वो बस मैं बहुत थक गई थी तो पता नहीं कब बैठे बैठे मेरी यहीं आंख लग गई और मैं आपके बेड पर सो गई, मैं अभी बालकनी में जाती हूँ। अनाही जाने लगी तो रूहान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम जी, ये रूम आपका भी है, आप भी यहाँ रुककर आराम कर सकती हैं, और क्या हुआ आपको। रूहान ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ अनाही के फोरहेड पर रखकर उसका टेम्परेचर चेक किया जो नॉर्मल था, जिसे महसूस कर रूहान ने सुकून भरी सांस ली। रूहान अनाही से कुछ और बोल पाता उससे पहले ही उसे अपने पाँव पर शुगर का पाँव महसूस हुआ और उसने जल्दी से शुगर की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू थे। उसकी सुनहरी आंखें और भी ज्यादा बड़ी बड़ी दिख रही थी रूहान को। रूहान ने जल्दी से झुककर उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, क्या हुआ शुगर बेबी, तुम रो क्यों रही हो। शुगर ने बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह अपना चेहरा रूहान की गर्दन में छुपाते हुए अपने दोनों पंजे उसकी गर्दन पर लपेट दिए। तभी रूहान की नज़र उसके लेफ्ट साइड पंजे पर गई जिसमें से हल्का ब्लड निकल रहा था जो उसके सफ़ेद बालों पर साफ नज़र आ रहा था, जिसे देखकर रूहान ने घबराते हुए कहा, तुम्हें चोट लगी है। रूहान जल्दी से उसको बेड पर बैठे हुए फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और उसके पंजे पर पट्टी करते हुए बोलता है, कितनी बार बोला है तुम्हें गार्डन में इधर उधर मत दौड़ा करो, तुम्हें चोट लग जाती है।